हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो कहने लगा था, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भला, हमारी कंपनी के टेंडर अक्षत खुराना की कंपनी को कैसे जा सकते हैं। तभी अमित भी थोड़ी सी सीरियस आवाज में बोला था, मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो कहने लगा था, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भला, हमारी कंपनी के टेंडर अक्षत खुराना की कंपनी को कैसे जा सकते हैं। तभी अमित भी थोड़ी सी सीरियस आवाज में बोला था, मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो तुम जल्द से जल्द ऑफिस जाकर चेक कर सकते हो, और हाँ, मैं तब तक मैं भी ऑफिस ही पहुँच रहा हूँ। इतना कहकर अमित ने फ़ोन रख दिया था और अमन फ़ोन को हैरानी से देखने लगा था। अमित के फ़ोन रखने के बाद तारा को उनकी बातें सुनना बंद हो गया था। तारा सोचने लगी थी, आखिरकार ये अक्षत खुराना कौन है, और अचानक से रातों रात उसने अमन के टेंडर अपने पास कैसे हासिल कर लिए। कहीं ना कहीं तारा का दिमाग जोरों से चलने लगा था और वो इस बात की तह तक जाना चाहती थी। लेकिन फिलहाल तो वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी कि चलो देर से ही सही, लेकिन उसे अमन का प्यार मिल गया था। अमन का प्यार पाकर तारा एक गुलाब की कली की तरह पूरी तरह से खिल चुकी थी। इसीलिए तारा ने अब डिसाइड किया था कि अब वो जल्द से जल्द अमित की सच्चाई अमन के सामने लाकर रहेगी। इसके लिए उसे ऑफिस जाना होगा और इस बात के बारे में पता लगाना होगा कि ये अक्षत खुराना नाम की बला कौन है जो कि उसके पति को परेशान करने के लिए आ गई है। वहीं मल्लिका, जो कि तैयार होकर बिल्कुल अमित के बराबर में खड़ी हुई थी, वो अमित को देखकर हैरानी से कहने लगी थी, ये क्या कह रहे हैं, आपने अपने अमन को झूठी इन्फॉर्मेशन क्यों दी, अक्षत ने तो कोई भी टेंडर हासिल नहीं किया है। तब अमित अपने हाथों को मल्लिका के गले में डालता है और बोला था, तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने ऐसा क्यों किया है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अमित मन ही मन में सोचने लगा था, अक्षत खुराना को काली शक्तियों के महागुरु ने भेजा है, अगर मैं अमन और अक्षत खुराना की लड़ाई आपस में करवा कर उनकी दुश्मनी पक्की कर दूं तो वो दिन दूर नहीं जब अमन उसे यहाँ से हरा कर भेज देगा, और फिर काली शक्तियों का महारक्षक अगर कोई बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ अमित बनेगा। ये सोचते हुए अमित मन में खुश होने लगा था और अपनी प्लानिंग सोचने लगा था। वहीं दूसरी ओर अमन के चेहरे पर परेशानी देखकर करिश्मा जी ने उससे पूछा था, क्या हुआ है बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो। तब अमन ने कहना शुरू कर दिया था, मॉम आप तो जानती हैं अमित को, आप अच्छी तरह से जानती हैं, अमित का ही फ़ोन था, उसने बताया है कि अक्षत ने हमारी काफ़ी सारे टेंडर हासिल कर लिए हैं, इससे हमारी कंपनी को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तभी अमरेंद्र जी ने अपना हाथ अमन के हाथ पर रख दिया था और कहने लगे थे, बेटे अगर तुम चाहो तो अपनी शक्तियों के द्वारा दुनिया भर की दौलत ला सकते हो, इतना ही नहीं जिसे चाहो उसे खरीद सकते हो, इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो, इस पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका सकते हो, तुम्हारे पास इतनी सारी शक्तियां हैं, इतनी सारी पावर है, तो तुम एक छोटे मोटे टेंडर को लेकर क्यों परेशान हो रहे हो। तभी अमन मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर देखने लगा था और कहने लगा था, पिताजी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं चाहूँ तो ये सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं एक इंसान हूँ और मैं शहर का एक फेमस बिजनेसमैन हूँ, इस तरह से मेरी कंपनी के टेंडर किसी और को जाना ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं चाहूँ तो उनका मन डाइवर्ट करके एक बार फिर से वो सारे टेंडर्स वगैरह सब हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने दोनों रूपों को ईमानदारी से जिया करता हूँ, अगर मैं जिन हूँ तो मैं जिन बनकर जिया करता हूँ, लेकिन अगर मैं इंसान हूँ तो मैं इंसानों की तरह ही जिया करता हूँ, मैंने आज तक इंसानों की तरह ही मेहनत करके उस कंपनी को काफ़ी ऊंचाई और मुकाम तक पहुँचाया है, मैंने किसी भी टेंडर को पाने के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं अभी अगर परेशान हूँ तो इंसानों की तरह ही परेशान हूँ। तारा मन ही मन अमन पर प्राउड फील करने लगी थी। तभी तारा हल्का सा मुस्कुराते हुए अमन से कहने लगी थी, अमन सर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं भी आपके साथ ऑफिस चलती हूँ और सारा काम करने में आपकी मदद करती हूँ। तभी करिश्मा जी बोलने लगी थी, नहीं नहीं तारा बेटी तुम ऑफिस नहीं जाओगी, वैसे भी वो अक्षत धमकी देकर गया है, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा और हम नहीं चाहते कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो। तब अमरेंद्र जी भी करिश्मा जी की बातों में हामी भरने लगे थे, लेकिन तभी अमन बीच में बोलने लगा था और कहने लगा था, नहीं मेरी बीवी किसी से भी डरकर या छिपकर नहीं रहेगी, मेरी बीवी मेरे साथ ऑफिस में जाएगी जिस तरह से पहले जाया करती थी, और वैसे भी मॉम शायद आप भूल रही हैं, तारा अब जिन्नातों के वंश की माँ बनने वाली है, और जब तक जिन्नातों का वंशज तारा के पेट में है उसे किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, तो आप तारा की फिक्र करना बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मैं इस तरह से तारा को छुपाकर घर के अंदर रखूंगा तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे ये लगेगा कि मैं जिन महाराज होकर अपनी बीवी तारा को नहीं बचा पाया, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो मामूली इंसान अक्षत कितनी हिम्मत करता है। सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार उसने इतनी हिम्मत कर भी कैसे दी कि उसने मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा सोच लिया, इसकी सज़ा भी मैं उसे देकर रहूँगा। ऐसा कहकर उसने तारा की ओर देखते हुए कहा था, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है तुम जल्द से जल्द आओगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा उसकी बातों का मतलब समझकर कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि तारा को अच्छी तरह से याद था जब अमन और तारा एक दूसरे के बेहद करीब थे, एक दूसरे के साथ जिस्मानी रिश्ता बना रहे थे, तब अमन कितनी जल्दी जल्दी तारा के जिस्म से उसके कपड़े अलग कर रहा था। और तारा उसे टोकते हुए बोली थी, आप क्या कर रहे हैं? मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? तब अमन ने बड़े ही प्यार से तारा से कहा था, मेरी बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि मुझसे रहा ही नहीं जाता है, और मुझे देर करने की आदत नहीं है, और तुम्हें देखने के बाद तो मुझसे इंतज़ार तक नहीं होता है। इतना कहकर अमन तारा पर पूरी तरह से टूट पड़ा था। जैसे ही तारा को ये याद आया, वो मुस्कुरा उठी थी। वहीं अमन की बात सुनकर सभी खामोश हो गए थे, और किसी ने भी अमन की बात टालने की कोशिश नहीं की थी। फिर कहीं ना कहीं अमन को ये लग रहा था कि अगर वो तारा को घर पर छोड़ देगा, तब अक्षत कहीं उसे इस बात का ताना ना दे दे कि उससे डरकर उसने अपनी बीवी को घर में छुपा दिया है। तो अमन ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता था। तब तारा मुस्कुराकर अमन की ओर देखने लगी थी। कहीं ना कहीं अमन की मन की बात तारा समझ गई थी, और जल्दी से वो अपने कमरे में जाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी थी। तारा जैसे ही तैयार हो रही थी, तैयार होने के बाद जैसे ही वो नीचे जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने लगी, तभी अचानक तारा का हाथ किसी ने पकड़ लिया था। जैसे ही तारा को एहसास हुआ कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है, तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने देखा कि उसके ठीक पीछे सोनल परी के साथ साथ उसकी माँ रानी माँ खड़ी हुई थी। जैसे ही तारा ने उन दोनों को देखा, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, और जल्दी से उसने आगे बढ़कर उन दोनों को गले से लगा लिया था।
तब रानी परी ने तारा से कहना शुरू कर दिया था, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, इस वक्त तुम काफ़ी ज़्यादा उदास हो, और तुम्हें यहाँ इस पृथ्वी पर रहकर इस अमन जिन से मोहब्बत हो गई है, और अपनी मोहब्बत से दूर रहना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बेटी, तुम्हारे हाथों में हम सबकी ज़िंदगी है, तुम्हें परीलोक के साथ साथ इस इंसानी लोक को भी बचाना होगा। तुम्हें जल्द से जल्द परीलोक जाकर उस राक्षस का अंत करना होगा, क्योंकि इन 2 सालों में उस राक्षस की शक्तियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। उसके बाद उसे हरा पाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। तभी सोनल परी बीच में कहने लगी थी, तारा, रानी माँ जो कुछ कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। इसी के साथ साथ हम तुम्हें यहाँ एक ज़रूरी खास बात बताने के लिए आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे थोड़ा सा झगड़ा करना चाहती हूँ। आखिरकार तुमने इतने दिनों से मुझे याद क्यों नहीं किया है? कितने दिन से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम मुझे याद करो और मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ। तुम जानती हो आज रानी परी से मैंने कितनी गुजारिश की, और तब जाकर वो मुझे यहाँ तुमसे मिलने के लिए लेकर आई है। और अभी तारा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी नीचे हॉल से अमन की आवाज़ आने लगी थी। अमन तारा को चिल्लाकर बुला रहा था और कह रहा था, जल्दी चलो, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तभी तारा ने मासूम सी नज़रों से अपनी माँ रानी परी की ओर देखा था। रानी परी तारा की नज़रों का मतलब समझ गई थी, इसीलिए रानी परी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण कर 3 बार अपने सीधे हाथ की चुटकी बजाई थी, और देखते ही देखते हर तरफ सब कुछ थम सा गया था। इधर जिन महाराज अमन के साथ साथ करिश्मा जी और अमरेंद्र जी सभी के सभी एकदम स्टैचू बन गए थे। ना कोई हिल पा रहा था, ना ही कोई उनमें से हिलडुल पा रहा था, क्योंकि रानी परी ने पूरा का पूरा वक्त रोक दिया था। तभी तारा ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया था। वहीं सोनल परी भी तारा का हाथ पकड़कर उसे सहलाने लगी थी और कहने लगी थी, तुम सोच भी नहीं सकती हो हम तुम्हें परीलोक में कितना ज़्यादा याद करते हैं। पता नहीं कब इस राक्षस का अंत होगा और कब हमारी परी अपने परीलोक में लौटेगी, और जब तक तुम परीलोक में नहीं आओगी, परीलोक की रौनक नहीं लौटेगी। सोनल परी की बात सुनकर तारा हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी थी और कहने लगी थी, मैं जानती हूँ कि तुम सब मुझे बहुत ही ज़्यादा याद करते हो, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करती हूँ। लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं परीलोक में लौटूं, मेरा दिल यहाँ पृथ्वीलोक में लग गया है। तारा परी की बात सुनकर रानी माँ तड़प कर रह गई थी और जल्दी से बोली थी, ये कैसी बातें कर रही है मेरी बच्ची, तू अपना दिल इस पृथ्वी पर नहीं लगा सकती है, तुझे परीलोक लौटना है, तुझे मेरे बाद परीलोक की रानी माँ बनना है, तुम ऐसी बातें नहीं सोच सकती हो। तब तारा ने अपनी माँ रानी माँ से कहना शुरू कर दिया था, रानी माँ, मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, मेरा बच्चा जब उस राक्षस का अंत कर देगा, तब मेरा बच्चा पृथ्वीलोक पर रहेगा या परीलोक पर? जैसे ही तारा ने ये सवाल किया, रानी माँ कभी सोनल परी को देख रही थी तो कभी तारा परी को देख रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार तारा को इस बात का क्या जवाब दे। फिर वो जल्दी से बातों को टालते हुए कहने लगी थी, बेटा, तेरा बच्चा कहाँ रहेगा कहाँ नहीं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जल्द से जल्द ये सोचना चाहिए कि हम उस राक्षस से कैसे बच सकते हैं। तभी तारा परी ने सोनल परी की ओर देखा था। उसके चेहरे का रंग काफी हद तक उड़ा हुआ था। तब तारा ने उसकी ओर देखते हुए कहा था, सोनल, ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझे बताना चाहती थी, जिसके लिए तू यहाँ पृथ्वी पर आई है? तभी सोनल परी ने रानी माँ की ओर देखा था। रानी माँ ने अपनी गर्दन दोनों साइड हिला दी थी, मानो कि वो मना कर रही हो कि वो तारा परी को कुछ ना बताएं, जिसे तारा ने देख लिया था। और तब उसने कहा था, वैसे ऐसी क्या बात है जो आप नहीं चाहती कि मुझे पता चले? प्लीज रानी माँ, बताइए ऐसी क्या बात है? तभी रानी परी ने सोनल परी और फिर तारा परी की ओर देखा था। फिर बिना कुछ बोले वो एकदम चुपचाप अपने गर्दन झुकाकर एक तरफ हो गई थी। अब तारा को यकीन हो चुका था कि जरूर कुछ तो ऐसी बात थी जो उसकी माँ उसे बताने के लिए यहाँ तक आई थी, लेकिन अब बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी तारा परी ने थोड़े से तेज आवाज में सोनल परी को डांटते हुए कहा था, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, क्या बात है? क्यों मेरी माँ उदास है? आखिरकार क्या हुआ है? तभी सोनल परी ने हल्की सी कंपकपाती हुई आवाज में तारा से कहना शुरू कर दिया था। वो तारा, कल संध्या के पश्चात जब रानी माँ बगीचे में टहल रही थी, ठीक उसी वक्त तीन असुरों ने रानी माँ पर आक्रमण कर दिया था और उनसे उनकी जादुई छड़ी छीन ली है। क्या? जैसे ही तारा ने ये सुना वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और फिर रानी माँ की ओर देखने लगी थी। रानी माँ की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, जिन्हें देखकर तारा का दिल तड़प उठा था।